أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کیا میری توبہ قبول ہوگی، Will I be forgiven؟ اسی طرح کے کچھ اور سوالات ہمارے ذہنوں میں عموماً اٹھتے ہیں، مثلا کیا واقعی اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ بعض دفعہ انسان جو سوچتا ہے اچھا پتہ نہیں میری سزا کیا ہے، پتہ نہیں جو زندگی میں نے گزاری ہے اس کے اندر جو گناہ میں نے کیے اس کے معاملے میں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو توبہ سے متعلق کچھ عام فہم قسم کے جملے جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں آج انشاءاللہ ہم ایک واقعہ پہلے سنیں گے اور اس کی روشنی میں پھر ان جملوں کا جواب ڈھونڈیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اصل میں توبہ ہے کیا چیز. صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتے تھے تو اس طرح ساکن بیٹھتے تھے کہ بعض دفعہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اس خیال سے کہ یہ اسٹیچوز ہیں. تو علم کی محفل ایک پورے خشوع اور خضوع کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس وقت سب یہ نیت کریں کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور قبلے سے رخ نہیں پھیرتے، نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. علم کی محفل جو ہوتی ہے نا اس کا قبلہ بھی اسی طرح ہی اللہ کی طرف ہونا چاہیے جس طرح ہم نمازوں میں، اس میں تو ظاہری جہت ہے نا قبلہ، اس میں آپ کا دل دماغ فوکس ہونا. اور اکثر میں یہ بات کہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پوری زندگی کے لیے حنیف ہوئے تھے، ہم اس ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ میں حنیف ہو جائیں، شاید اس پریکٹس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ساری زندگی کے لیے حنیف بنا دے. تو شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. سورة توبة کی آیت 118 اس کا ترجمہ ہے. اور ان تین لوگوں کے معاملے میں جو پیچھے رہ گئے یا پیچھے چھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود اور ان کی جانیں خود ان کے اوپر گھٹنے لگیں اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ آج اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر وہ ان پر پلٹ آیا تاکہ ان کو معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. آیت کا انداز ہی بتاتا ہے کہ اس میں کچھ تین لوگوں کا تذکرہ ہے. تو آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ تین لوگ کون تھے. سورۃ توبہ کی یہ آیت تین اصحاب کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نازل ہوئی، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی. نام آپ کو یاد نہ رہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل پیغام یاد رکھنے کا ہے. یہ تین صحابہ کرام وہ تھے جو اپنے اخلاص کے باوجود، نیت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں گئے، رکے نہیں بلکہ روک دیے گئے. یہ کیسی روک ہوتی ہے؟ جب تک ہمیں کسی کام کے کرنے کا 100% یقین نہیں ہوتا تب تک وہ کام ہم سے ہوتا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کر لیں کہ دنیا کے کام آدھے دل کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہم کئی دعوتیں پکاتے ہیں، کوئی دل نہیں کرتا پکانے کو لیکن مجبوری میں پکاتے ہیں. کہیں کسی کو دینے کو دل نہیں چڑھتا لیکن رشتہ داریوں کے نام پہ دیتے لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں ادھورے دل سے. کئی کام دنیا کے ہم کرتے کراتے ہیں لیکن اللہ کا کام آدھے دل والوں سے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو احسن درجے پہ لیتی ہے. اس لیے اپنے راستے میں نکلنے والوں سے بھی وہ احسن درجہ چاہتا ہے. یہ وہ تین صحابہ کرام ہیں کہ جن کے دل میں تھا کہ ہم اللہ کے کام کریں گے، آج کی زبان میں آپ اس کو کہہ لیجئے، ان کی نیت بھی تھی لیکن ابھی تک دل میں کچھ چیزیں تھیں کہ جس کے لیے انڈیسائیڈڈ تھے. मसलन खड़ी फसलें हैं, आप चले गए तो क्या होगा, चलो सोच लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, और इसी किस्म के ख्यालात में ये लोग रहे। इनमें से एक सहाबी काब बिन मालिक अपना वाक्या खुद सुनाते हैं। कोशिश करूंगी कि सिर्फ बात के अंदर से वो चीज़ जो हमारे आपके इस वक्त फ़ायदे की है उसको लेके एक छोटे से वाक्य की तरह बता दूं, लेकिन ये तफसील से आप ख़ुद भी सही बुखारी में वाक्या पढ़ सकते हैं। ग़ज़वे तबूक उन दिनों में हुई कि जब खड़ी फसलें थी, गर्मी शिद्दत की थी, और अरबों के लिए वो वक्त कि जब फसल कटे पूरे साल के इंतज़ार के बाद आता था। हर किसान की तरह जब उसके सामने फसल का वक्त आता है काटने का, तो उस वक्त वो अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरफुल पाता है कि ज़रा सी गफलत मेरे पूरे साल की कमाई को ख़त्म कर देगी। कुछ ऐसा ही वक्त था, मुसलमानों तक खबरें पहुंच रही थीं कि कुछ नॉन मुस्लिम लोग हैं वो मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। कौन थे, उसको छोड़ दीजिए इस वक्त, बस ये सोच लें कि आज के दौर में जैसे किसी मुसलमान मुल्क पे हमले की कोशिशें कर रही है कोई सुपर पावर। एक ताकत तो ये थी, डरने लगते, कांपने लगते, शोर मचाते और दब के बैठ जाते और हमदर्दी मांगते और उन्हीं से कुछ हथियार खरीदते ताकि फिर उन्हीं पे चलाएं। अल्लाह के नबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने बहुत जुरतमंदाना कदम उठाया और बरमला ऐलान कर दिया कि हम रूमियों से मुकाबला करने के लिए निकलेंगे। अब ये वक्त था कि जिस वक्त कोई हालात नहीं थे जंग के, कोई असबाब नहीं थे, जैशुल उसरा के नाम पर ये जंग मारूफ हुई। जैश कहते हैं काफले को, उसरा कहते हैं तंगी को, उसरत उर्दू में भी आता है ये लफ्ज़। सहाबे कराम के पास सफ़र के लिए सवारियां नहीं थी। मुखलिस सहाबे कराम जो जाना भी चाहते थे, उनमें से कुछ लोग सिर्फ सवारी के ना होने की वजह से जा नहीं सके। 18 लोग 18 लोगों के हिस्से में एक ऊँट आता था, यानी 17 लोग सवार होते और 18वें के बाद फिर उनको बारी मिलती। और खड़ी फसल थी, बिल्कुल फसलें तैयार थी, और अल्लाह के नबी सल्लम ने कूच का हुक्म दिया। बिल्कुल ओपन बात थी, किसी से अब डरे नहीं, धपके नहीं, जो होगा कल देखेंगे। और इस वक्त जंग के लिए निकलना फ़र्ज़ लाजिम था, हर बंदे को निकलना पड़ेगा, बग़ैर उज़र के कोई रुक नहीं सकता। होते होते मदीना सारा लोगों से खाली हो गया। चंद लोग जिनके दिलों में अभी तक दुनिया बसी हुई थी और जो इस्लाम की खिदमत सिर्फ उन हालात में करना चाहते थे जिसमें उनकी दुनिया का नुकसान ना हो, फारिग वक्त है कर लेते हैं अल्लाह का काम, बहुत सारा माल है दे देते हैं अल्लाह के रास्ते में, स्किल्स बहुत सारी हैं चलो थोड़ी सी अल्लाह को देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ उस वक्त अल्लाह के रास्तों के काम करते हैं जब वो अवेलेबल होते हैं। और ज़रा उनकी अवेलेबिलिटी इतनी काफ़ी है ना, मेहमान आ गए हैं घर में तो वो साफ कह देते सॉरी हम मीटिंग में नहीं आ सकते, सॉरी हम ये काम नहीं कर सकते, हम दर्स में नहीं आ सकते क्योंकि हमारे घर में ये मसला आ गया। ये लोग अपने अमल से अल्लाह ताला को ये बताते हैं कि आप सिर्फ बची खुची चीज़ हैं हमारे लिए, जब कोई नहीं होगा तो फिर हम आपको मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला को जंगे तबूक के ज़रिए वो खरे और खोटे लोग अलग करने थे कि जो हर कीमत पर अल्लाह के हैं और जो सिर्फ अपने दिल से अल्लाह के हैं। हालांकि देखिए कुफर और इस्लाम की बात नहीं है, दी बेस्ट और बेटर की बात है। निकलना तो सबको ही था लेकिन अल्लाह ताला देखना ये चाहते थे कि कौन हर हाल में निकलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम हमेशा की तरह इस मियार पे पूरे उतरे। और ये वो वक्त था कि सरे आम आपने दावत दी कि चलो भाई निकलना पड़ेगा। और इस्लाम को माल की ज़रूरत थी, हर दौर में थी, कल जंगों में थी, आज इल्मी जिहाद में इस्लाम को माल की ज़रूरत हर दौर में रहती है। नतीजा क्या हुआ कि अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सामान ले आए, हज़रत उमर फ़ारूक आधा सामान ले आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कसीर सामान दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हों ने 9 बार 100 100 ऊँट दिए और 9 बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ सुने कि आज के बाद उस्मान कोई भी और नेकी ना करे तो उसको काफ़ी है, और उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। फिर आप पुकारते हैं कोई अल्लाह के रास्ते में कुछ देने वाला, तो फिर उस्मान ही का हाथ खड़ा होता। हम होते एक दफ़ा ये खबर सुन लेते कि मैं जन्नत में हूँ तो हम उसकी पार्टी मनाने चले जाते, वो अशरा मुबशरा बन के भी पलटे नहीं, वो कैसे पलटते। और ये वक्त वाकई इस्लाम के लिए बहुत नाजुक मोड़ का था। खैर वो दिन आ गया जिस दिन काफ़िले को कुछ करना था और साफ बता दिया कि दूर जाना है पैदल सफ़र। आप सोचें कि जैसे आज आप लंदन में, तो आप में से कोई पैदल सऊदी अरब तो नहीं जा सकता ना, कोई सवारी होगी तो जाएंगे ना, सबको पता था इतने दूर का। और कोई उम्मीद नहीं थी कि मुनाफिकों को बगलें बजाने का मौका मिल गया। हंसने लगे, खिप खिप कर हंसते थे, कहते जाने दो, आना किसने है वापस, अच्छी बात है रास्तों में मर खप जाएंगे। वो बैठ के बहाने कर कर के अल्लाह के नबी से पीछे रह गए। और जब अल्लाह के नबी सल्लम चले गए तो काब बिन मालिक अपने बारे में कहते हैं कि मेरी नीयत थी कि मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसी सुस्ती, और कहते हैं कि मैं उस वक्त से ज़्यादा खुशहाल पहले कभी नहीं था, मेरे पास कोई उज़र नहीं था कि मैं उस जंग में ना जाऊं, लेकिन मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, मेरी सवारी बड़ी अच्छी है, मैं थोड़ी देर से भी निकलूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बात नहीं आप चलो हम आते हैं, और आपके आने तक बस हम आके शुरू करते हैं, और ये होता है फिर कहते नहीं अब तो चलो लेट हो गया होगा। कहते हैं बिल्कुल मैं इसी नीयत में था कि अच्छा आज जाता हूँ, आज उठता हूँ, हत्ता के काफ़िला कूच कर गया। फिर मेरे दिल में आया कि तुम बैठे हुए हो। फिर कहने लगे, मैंने सोचा कोई बात नहीं मैं सुबह चला जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, यानी जिसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना जिक्को तक्का, डबल माइंडेड, अभी देखते हैं अभी देखते हैं क्या होता है। और ये वो सहाबे कराम थे जो कई बार अपने इखलास का सबूत दे चुके थे, कोई पहली नेकी नहीं थी इनकी, कुर्बानियाँ दे चुके थे, हिजरतें कर चुके थे, गज़वे बदर के शुरका में से ये लोग थे, कोई मुनाफिक लोग नहीं थे। लेकिन इनके दिल में इस तरह का ख्याल आया, कहते हैं कि मैं अपने आप को अभी नहीं पेश करता। जब कुछ और वक्त गुजर गया तो कहने लगे कि मैंने सोचा अब तो वो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, और ऐसे ही बिला इरादा बग़ैर कोई सोच रखे हुए मैं घर आ गया। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज की इस दावत प्रोग्राम की दावत बहुत और लोगों तक भी होगी, तो हो सकता है कि उनमें कई ऐसे हो जिनका पूरा इरादा हो लेकिन यही सोच के अच्छा चले जाएंगे, अच्छा 5 नहीं अभी 5:30 6 जाएंगे, चलो अब तो लगता है ख़त्म ही हो जाएगा और बारिश भी हो रही है, चलो नहीं, और वो रह जाए, पूरी नीयत हो। इनकी कैफियत यही थी। कहते हैं खैर किस्सा मुख्तसर के मैं नहीं गया। उसके बाद कहते हैं कि मैं मदीना में जिधर देखूं, या मुझे औरतें और बच्चे दिखें, या बीमार या मुनाफिक, और वो मुनाफिक जिनका निफाक खुला हुआ था, अब गिल्ट शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं था कि आज की तरह रोड्स बनी हुई हैं, चलो जी पीछे 2 दिन बाद जाके वहाँ पहुँच जाए, वो सहराओं के रास्ते होते थे, पता ही कोई नहीं होता था, ज़रा काफ़िले से कोई बिछड़ा तो गया, अब ये भी स्टेप नहीं ले सकते कि मैं बाद में चला जाऊँ। अब कहते हैं मेरे दिल में बोझ शुरू हो गया, हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा के जब वहाँ से वापस आए, शाह तज़ीरून से 11वां पारा शुरू होता है, जो लोग ये सोच बैठे रखे हुए थे कि मुसलमानों ने तो वहाँ मिट मिटा जाना है, उनको ने जब ये देखा कि हिरकल और उसकी फ़ौजों को तो मुकाबले की जरूरत ही नहीं हुई, वो तो भाग गए, कोई एक तीर नहीं चला, कोई तलवार नहीं टूटी, कोई खून नहीं बहा, कोई कत्ल नहीं हुआ, मुसलमान बड़ी रौनक के साथ गए इतना सफ़र करके। हाँ रास्ते की कुर्बानियाँ बहुत थी। देखिए कुछ लोगों के नसीब में रास्ते बनाना होता है, फिर वो मर जाते हैं, बस अपने हिस्से का काम करके कब्रों में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग उन्हीं बने हुए रास्तों पर चल के फिर मंजिल पे पहुंचते हैं तो झंडा लगाते हैं। अल्लाह ने हम सब के हाथों में मुख्तलिफ नेकियां रखी हुई हैं, कुछ सिर्फ ज़मीन खोद रहे हैं दीन की। आज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिस दौर से गुजर रही है, वल्लाह ही इस वक्त जो लोग भी अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को लगा रहे हैं ना, वो इस वक्त बुनियादें खोद रहे हैं, नए सिरे से सूरज तुलू हो रहे हैं, इस वक्त ज़मीन खोद रही है। इस वक्त की जो यूथ है ये बड़ी खुशकिस्मत यूथ है, क्योंकि इनके आगे बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। इस्लाम की फतह लाजिम है, अल्लाह ने दीन को गालिब करना है, लेकिन जैसे आज से कुछ 60 साल पहले पाकिस्तान बनवाया था जिन बुज़ुर्गों से, जो आज बुज़ुर्ग हैं या फौत हो गए हैं, कल वो जवान थे, अब फिर दुनिया बिल्कुल ऐसे महाज बना रही है कि वो नबी सल्लम की सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो पूरी होके रहनी है। और अल्लाह ताला ये मौके देता है लाके तुम अपनी छोटी सी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में लगाकर जामेदा कर दो। कहते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अब मैं देख रहा था कि सब जो धोखेबाज और जो बहानेखोर थे उन्होंने जा जा के अल्लाह के नबी सल्लम के पास झूठे उज़र पेश कर दिए। किसी ने कह दिया वो बीमार थे, किसी ने कहा जी वो घर खाली थे, किसी ने बच्चों की बातें, किसी ने कुछ, हत्ता कि एक शख्स था जुद बिन कैस, मुनाफिक था दिल से, अल्लाह के नबी के पास आके उज़र क्या पेश करता है। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं एक हुसन परस्त इंसान हूँ और मैंने सुना है कि रूमी औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता रूमियों के मुकाबले में कि किसी औरत को देख कर मैं फितने में ना पड़ जाऊँ। अल्लाह ताला कहते हैं वो पहले ही पड़े हुए हैं फितने में। अल्लाह के नबी ने कहा आप तशरीफ़ रखें, ऐसे लोग चले भी जाएंगे तो सिर्फ फितनों के घोड़े दौड़ाएंगे। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी अगर आपके पास मैं 8 दिन रहूँ तो सिर्फ सूरह तौबा ही पढ़ा दूँ, बड़ा मेरा दिल चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस क्लास में हम पढ़ते हैं हमें बड़ी उससे ईमान की कुव्वत मिलती है। सिर्फ सूरह तौबा आज की यूथ पढ़ लेना, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने वाले बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब सूरह अनफाल और सूरह तौबा पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि अब जम गए, अब उसके बाद फिर सूरह इब्राहिम की आयतें आएँ, जो भी आए, कि अब अलम तर कैफ़ ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, फिर ईमान का मजबूत दरख्त बनता है जब बंदे का दिल उन चीज़ों को कबूल करता है कि वो क्या थे और हम क्या थे, वो कितनी कुर्बानियाँ दे गए और हमने कितनी ली। हत्ता कि आपको पता है कि जब एक वक्त ऐसा भी इस काफ़िले में एक महीना लगता है घोड़ों और ऊँटों पर जाके मदीना से शाम की सरहदों की तरफ जाना, ऊँट ख़त्म हो गए, जिन ऊँटों पे पहले ही 18 लोग बारी बारी टर्न लेते थे उनको भी एक एक करके ज़िबा करना पड़ा, क्योंकि खाएं क्या। ये वो जंग थी कि जिसमें सहाबा किराम ने ऊँटों की ओजरियों का पानी तक पिया, दरख्तों के पत्ते खाए, उनके होंठ सूज गए। कहते जब हम कज़ाए हाजत के लिए जाते तो जानवरों जैसी मेंगनियाँ करते, जो पत्ते जानवर खाते हैं वो ये खाते थे। मुझे और आपको क्या लगे, हमारा तो दीन नहीं पूरा होता जब तक चारचे खाने ना पके। हम तो ज़रा सर्दी हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ज़रा सख्त फर्श हो तो हम बैठ नहीं सकते। ये बातें करने और उन बातों को अमली मैदान में लेने में बहुत फ़र्क है। और सहाबा करम डटे रहे डटे रहे, फितने भी, लोग बातें भी कर रहे हैं, देखो ये रूम को फतेह करने जा रहे हैं, ये मरवाने जा रहे हैं, अल्लाह के नबी पे इतनी बातें, लीडर से इतना बदगुमान कर दिया, नामुमकिन किस्म के टारगेट लेते हैं, लेकिन अल्लाह ने करवा दिया। जब वो गए तो उस वक़्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि नताइज क्या होंगे। अब जब अल्लाह के नबी फ़ातह बनकर आ रहे हैं तो काब बिन मालिक कहते हैं कि मेरे भी दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी झूठ बोल दूँ। अल्लाह के नबी ने क्या कहना है, आप देखिए आप बड़े ईजी गोइंग थे, हमारे लीडर्स की तरह आज नहीं है कि चार छः लोग मिलें तो फिर कहीं जाके उनसे सलाम करने का मौका मिले और उनके साथ कितने प्रोटोकॉल हो, हर साथ एक आम इंसान भी आपसे मिल लेता था। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आके बैठ गए और मैं देख रहा हूँ कि लोग वो बारी बारी आ रहे हैं, अल्लाह के नबी मुबारक हो, बड़ा दिल चाहता था जाने को, आपको तो पता है ये मजबूरी है वो है, दो चार बातें करते, अल्लाह के नबी कहते अच्छा अल्लाह तुम्हारा हाल बेहतर जानता है, अल्लाह तुम पर रहम करे, बल्कि उनकी बख्शिश की दुआ करते, वो लोग चले जाते। कहते मैं उठा, ये शायर भी थे काब बिन मालिक, और आपको तक अरबों के शायर, सुबहान अल्लाह उनकी तो ज़ुबान इतनी तेज़ होती है। कहते मैंने साफ जाके अल्लाह के नबी सल्लम से कहा, अल्लाह के नबी बातें मुझे भी आती हैं, मैं ऐसी बातें करूं कि आपको कायल कर दूं, लेकिन मैं आपसे सच कहूंगा कि मेरा अल्लाह के दीन से पीछे रहने का कोई उज़र नहीं, मेरे पास सब हालात ठीक थे सिवाय सुस्ती की, और कोई वजह नहीं थी। कहते जब मैंने ये मामला कह दिया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आपने इतनी सच्चाई से बात की है तो अब आपका मामला अल्लाह के ज़िम्मे है, अब अल्लाह आपके बारे में जो कहेगा वही होगा। कहते कि जब मैं वहाँ से उठा तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा तू तो बेवकूफ़ ही रहेगा, जैसे हमारी ज़ुबान में कहते तुम्हें नहीं बात करनी आनी। देखो वो पीछे भी रह गए, बातें सुन बना के अब फिर भी सच्चे होके बैठे और अल्लाह के नबी से मोहब्बतें भी ले रहे हैं, तुमने सच बोल के क्या बोला। कहते मेरे रिश्तेदारों ने मुझे इतनी बातें की कि मेरे दिल में एकदम आ गया कि मैं जाके कह दूँ नहीं अल्लाह के नबी मेरा मसला था, मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा था। लेकिन कहते हैं कि इतने में सिर्फ मेरे ज़िम्मे ख्याल आया कि क्या किसी और शख्स ने मेरी तरह यही बात कही है, यानी किसी और ने भी सच्चा उज़र पेश किया। कहते मुझे पता चला हाँ दो और जवान हैं, हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी, कि उन्होंने भी सच बोला कि अल्लाह के नबी सल्लम हमारे साथ कोई भी मसला नहीं था। कहते जब मैंने सुना और भी दो हैं तो मैं जम गया, मैंने कहा अब जो भी होगा फिर मैं मानूंगा।